আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাও ওয়া আদামু বাইনাল মায়ি ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ হামারি ইস রুহানি তরবিয়তি নশিস কা উনওয়ান হ্যায় ইরাদত। یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اسی سے راہ طریقت کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو راہ سلوک طے کرنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ آئیے دیکھیں کہ ارادت کے بارے میں ہمارے مشائخ طریقت نے کیا لکھا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری اپنے رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں، ارادت راہ طریقت کی ابتدا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ اس صفت کو ارادت اس لیے کہا گیا کہ ارادہ ہر بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے، چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے وہ اسے نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں یہ اس کی ابتدا ٹھہری، یعنی ارادت جو ہے یہ اس کی ابتدا ٹھہری، اور اسی لیے اس کا نام ارادت رکھا گیا کیونکہ اس میں ارادے کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور تمام کاموں کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اس کو ارادت کہتے ہیں۔ یقیناً اس تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ارادت کیا ہے اور اس کے معنی مفہوم کیا ہے۔ اب اس کو ذرا سا اور آسان کر دیں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیے، ارادت مرید کا فعل ہے جو شیخ کے ساتھ قائم کرتا ہے، یعنی آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا ارادہ کیا اور پھر بیعت ہو گئے تو شیخ کے ساتھ آپ کی ارادت قائم ہو گئی۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا نہ جائے، یعنی اس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو، اور صوفیہ کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ لہذا جو شخص اپنے ارادے سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرید کا جیسے ایک ارادہ ہے، اب اس نے بیعت ہونے کا ارادہ کیا، وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، ارادت قائم ہو گئی، لیکن اب اس کو چاہیے کہ اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے میں، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں، اپنی منشا کو شیخ کی منشا میں فنا کر دے۔ اب مرید کا کوئی ارادہ نہیں، صرف شیخ کا ہی ارادہ ہے۔ اب ایک ہے کامل ارادت اور ایک ہے ناقص ارادت۔ کامل ارادت کیا ہے؟ جس چیز کا شیخ نے حکم دیا بلا چون و چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے اس کو کر دیا۔ اور ناقص ارادت کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی، اپنی منشا اس کے اندر شامل کی، یا اعتراض کیا کہ یہ فعل کیوں ہوا، یہ کام کیوں ہوا، یا کیسے ہوا، کیوں، کیا، کیسے، یہ ناقص ارادت۔ اور بغیر کسی حیل و حجت کے سر تسلیم خم کر دینا، یہ کامل ارادت ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جلیل قدر بزرگ گزرے ہیں، فنا فی اللہ کے مقام پر تھے اور بڑی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، چلہ کشی یہ انہوں نے کی اور بہت بلند مقام پر پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनके मामू भी थे और उनके शेख भी थे। वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था, वालदा मोहतरमा लेकर आईं और कहा कि मैं अपने इस बेटे को आपकी खिदमत में छोड़ रही। घर में तंग दस्ती थी, फाका कशी थी, गुर्बत थी, कोई ज़रिया माश, कोई कमाने वाला, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर खानकाह में लंगर पकता है, और हकीकत थी कि रोज़ाना दोनों वक्त सुबह शाम लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे, बाबा साहब का लंगर चलता था। मैं अपने इस बेटे को आपकी बारगाह में छोड़कर जा रही हूँ, इसकी तरबियत भी फरमाएं, इसकी निगहदाश्त भी फरमाएं, सरपरस्ती भी फरमाएं। और ख्याल ये भी था, यानी ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन यकीनन ये ख्याल भी होगा कि जाहिर है लंगर पकेगा तो खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा होगा। कहा सिर्फ ये कि आप इसके सर पे हाथ रखें, इसकी रूहानी तरबियत फरमाएं, सरपरस्ती फरमाएं। फरमाया ठीक है, छोड़ दो। बुलाया और कहा, अली अहमद, आज से लंगर तकसीम करने की ड्यूटी तुम्हारी। कहा ठीक है, जैसा हुक्म। चले गए। दूसरा दिन हुआ, जब वक्त हुआ, वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाए, देख में से लंगर निकाला, जो भी पक्का था निकाल निकाल के अपने हाथ से सबको दे रहे, गरीबों, मिसकीनों, यतीमों को, और गुरबा, मसाकीन, और जितने भी थे मुरीदीन, मुतकदीन, मुतवसलीन, जो भी आते थे सबको तकसीम किया। चले गए। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। एक दो साल के बाद, या कई रिवायतें इस सिलसिले में, कई साल के बाद वालदा मोहतरमा आईं तो देखा कि बेटा बिल्कुल सूख कर काटा हो गया, दुबला पतला, क्योंकि आपने उसमें से खुद नहीं खाया, लंगर तकसीम किया लेकिन खुद नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि पीर की इजाज़त नहीं थी, हुक्म नहीं था। हुक्म यही था कि तुम्हें तकसीम करना, ये नहीं फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। भूख लगी, दरख्तों के पत्ते तोड़कर खा लिए, प्यास लगी, पानी पी लिया, इस तरह अपना वक्त गुजारते रहे, और साथ साथ चिल्ला कशी, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, ये चलता रहा। वालदा मोहतरमा आई, देखा, हैरान हुई, और उनको लेकर बाबा साहब की खिदमत में, भाई मैंने तो इसको इसीलिए छोड़ा था कि आप इसकी तरबियत फरमाएंगे। फरमाया तरबियत तो हो रही, लेकिन आप देखिए कि इसका हाल क्या हो रहा है, क्या इसको खानकाह में खाना नहीं मिला। कहा भाई हमने तो लंगर तकसीम करने की ड्यूटी ही इनकी लगाई है। पूछा, बताओ तुम लंगर तकसीम करते हो या नहीं? जी हुजूर, जैसा आपने फरमाया आपकी हुक्म के मुताबिक मैं लंगर तकसीम कर रहा हूं। तो फिर तुम्हारा ये हाल, तुमने खाया क्यों नहीं? कहा हुजूर, हुक्म सिर्फ ये था कि लंगर तकसीम करना, ये नहीं फरमाया था कि उसमें से खा भी ले। गौर कीजिए, ऐसा अजीम सब्र, ज़ब्त, इस्तेकामत, ये मामूली बात नहीं। इसीलिए उनका नाम हुआ साबिर, ये उनका लकब है, नाम है अलाउद्दीन अली अहमद, और लकब हो गया साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसको कहते हैं कामिल इरादत, जो शेख के मुंह से निकला ना इधर ना उधर, एक इंच इधर से उधर नहीं, उसी तरह अमल करना, बिला चूनो चरा, कोई ही हुज्जत नहीं। अगर चाहते तो पूछ भी सकते थे कि और मेरे लिए क्या हुक्म है, अगर आप फरमा रहे हैं कि तकसीम कर दो तो मैं भी उसमें से थोड़ा सा खा लूं। नहीं, जो पीर का हुक्म, अपनी मर्जी को उनकी मर्जी में, अपनी रजा को उनकी रजा में, अपनी मंशा को उनकी मंशा में फना कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसी को कहते हैं कामिल इरादत। और एक होती है नाकिस इरादत। पीर ने किसी चीज़ का हुक्म दिया, बज़ाहिर ऐसा होता है कि मुरीदीन का इम्तिहान लिया जाता है, शेख कोई अमल ऐसा करता है, कोई फेल ऐसा करता है, किसी ऐसी चीज़ का हुक्म देता है या ऐसे काम का, बज़ाहिर खिलाफ़ शरा है, और अगर खिलाफ़ शरा नहीं तो खिलाफ़ अक़ल ज़रूर है, कि अकल में नहीं आ रहा कि क्यों कहा, क्यों करूं। अगर क्यों वहां पर आ गया तो इरादत नाकिस हो गई, और अगर बगैर किसी चून चरा के सर तस्लीम में खम कर दिया तो इरादत कामिल हो गई। रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग या हय्यो या कय्यूम के आमिल थे। आप देखते हैं ना कि अल्लाह ताला के बहुत सारे अस्माए मुबारका हैं, 99 नाम हैं। तो ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन किसी ना किसी एक इस्म पाक को अपने विर्द में रखते हैं, उसका चिल्ला करते हैं एक ख़ास तादाद में। मसलन 1.25 लाख की तादाद है, 1.25 लाख मरतबा एक जगह बैठकर अहराम बांध कर तरके है बना जलाली और जमाली के साथ फिर वो चिल्ला कशी करते हैं, तो वो चीज़ उनके अमल में आ जाती है। फिर वो अगर एक मरतबा भी वो इसमें पाक पढ़कर दम कर दें तो काम हो जाता। खैर सर दस वो हमारा मौजू नहीं है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। उनका वजीफा था या हय्यो या कय्यूम, इसके वो आमिल थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि जबान में थोड़ी सी लुकनत थी, तो या हय्यो या कय्यूम के बजाय या तय्यूम उनकी जबान से निकलता था। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में वही मकबूल था। जाहिर है वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते थे, नियत में खुलूस था, अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, इताअत, फरमाबरदारी। तो वही इसमें पाक उसी लफ्ज़ के साथ जो जबान से निकल रहा है अल्लाह के बारगाह में मकबूल। और उसमें उनकी कैफियत ये थी कि जब चलते थे तो दरिया अगर सामने आ जाए, समंदर आ जाए, तो यही पढ़ते पढ़ते उस पर भी चलना शुरू कर देते थे। जैसे खुशकी पे चलते थे ऐसे ही दरिया पे चलते थे, ऐसे ही समंदरों पे चलते थे। उनका एक मामूल था कि रोजाना रात में जब आधी रात गुजरती थी तो रवाना हो जाते। अब मुरीदीन में जाहिर हर किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि ये हजरत रात में कहाँ जाते, आपस में चीमा गोइयाँ हुई, उनसे तो पूछा नहीं। एक आदमी को मुरीद को लगा दिए कि तुम इनका पीछा करो और देखो कि रात में ये कहाँ जा रहे हैं। हजरत ने अपने वज़ाइफ मुकम्मल किए, तमाम मामूलात मुकम्मल किए, आधी रात हुई, खामोशी से निकले और चलना शुरू हो गए। ये भी कहीं छुपा बैठा था, ये भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जब तक ज़मीन रही, खुश्की रही, चलता रहा, आगे आगे दरिया। तो हजरत जैसे खुश्की पर चल रहे थे ऐसे ही पानी पर चलते रहे, यानी बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो समंदर पे चल रहे हैं। इसने देखा, इसने पीछे से आवाज़ लगाई, हजरत मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने पीछे देखे बगैर, बुजुर्गान दीन को तो वैसे ही मालूम होता है कौन हमारा पीछा कर रहा है, कौन देख रहा है, वो हर चीज़ से वाकिफ होते हैं। उन्होंने कहा पढ़ या हय्यो या तय्यूम, जैसे कि उनकी ज़बान में लुकनत थी, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह पढ़ते पढ़ते ये भी चलना शुरू हो गया, आगे हजरत जा रहे हैं, पीछे पीछे ये जा रहा है। जब बीच समंदर में पहुंचे तो इसको ख्याल आया कि मेरी ज़बान तो दुरुस्त है, ये इनकी ज़बान में तो लुकना था, ये पढ़ नहीं सकते, तो मुझे तो सही पढ़ना चाहिए। इसने उसको सही करके पढ़ा या हय्यो या कय्यूम, उसी वक्त डुबकी खाई। जैसे ही डुबकी खाई कहा हुजूर मैं गिरा, कहा पढ़ या हय्यो या तय्यूम, फिर इसने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जिस तरह वो चलते रहे ये भी चलता रहा, और वो पार हो गए, ये भी पार हो गए। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में लिबास, शक्ल और ज़बान, इस किसी चीज़ को देखेंगे, दिल को देखा जाता है। इंसान के दिल में क्या है, सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत, खुलूस अगर दिल में है तो उसी खुलूस और मोहब्बत के साथ जो चीज़ ज़बान से निकल रही है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूल हो रही। तो कामिल इरादत क्या है, जैसा पीर ने कहा वैसा ही कर लिया, उसमें किसी किस्म की अपनी तरफ से कोई बात शामिल ना करना, ये कामिल इरादत। और नाकिस इरादत यह है कि पीर ने कुछ कहा उसमें अपनी तरफ से शामिल कर लिया, कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हो सकता है कि वह आपका इम्तिहान लेने के लिए कर रहा हो, खिलाफ अकल बात है लेकिन इम्तिहान लेने के लिए है। अगर इम्तिहान के लिए है तो उसने अगर एतराज़ कर दिया तो नाकाम हो गया, और बग़ैर एतराज़ के उस पर अमल कर लिया तो कामयाब हो गया। तो इसको कहते हैं कामिल इरादत, और एतराज़ करने वाली वो जो है नाक़िस इरादत। तो अब हमें ये बात पता चली कि अगर हम ये चाहते हैं कि राह सलूक सही तौर पर जैसे बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने तय की, तो हमें चाहिए कि अपनी इरादत कामिल रखें, अपने शेख पर किसी किस्म का एतराज़ ना करें। जो लोग एतराज़ करते हैं वो कभी भी इस राह में कामयाब नहीं होते। बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन की एक कसौटी, उनकी सीरत हमारे पास मौजूद है, जैसा उन्होंने किया वैसा तुम करो। आप जानते हैं कि जो जिस राह से गुज़र चुका है वही दूसरे को बता सकता है कि इस राह में कहाँ नशेब है कहाँ फराज है। एक आम मिसाल है, आप रोज़ाना अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने दुकान पे जा रहे हैं, अपने कारोबार पे जा रहे हैं, एक रास्ते से आप गुज़र रहे हैं, तो जब आप गुज़रते हैं आप देखते हैं कि एक जगह गड़ा है, एक जगह स्पीड ब्रेकर है, एक जगह रुकावट है, ये सारी चीज़ें जहन में है ना। अब अगर किसी को रास्ता बताएंगे तो बताएंगे देखो जब फला गली से तुम मुड़ोगे तो वहाँ एक गटर है जो खुला हुआ है, तो ज़रा सा देख कर आना, ऐसा नहीं कि उसमें गिर जाओ। फिर वहाँ से तुम आगे बढ़ोगे तो खुदाई हुई है वहाँ पर, बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन जब करीब पहुँचोगे, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तेज़ी में तुम उसमें गिर जाओ। आप इसलिए बता रहे हैं कि आप उस राह से गुज़र चुके हैं। बिला तशबीह हो तमसील ये बुज़ुर्गान दीन औलियाए कामिलीन राह सलूक तय कर चुके, अपने मकामात पा चुके, दरजात मरातिब इनको मिल चुके, इबादत और रियाजत मुजाहिदा तकवा परहेजगारी ये सब इन्होंने कर ली और अपने मकामात पर पहुंच गए। हम इसीलिए इनके हाथ पर बैत होते हैं, इनकी रहनुमाई हासिल करते हैं कि वो हमें इस नशेब व फराज से आगाह करते। तुमने राह सलूक में कदम रखा है, फला चीज़ का इंकशाफ होगा तो शैतान हमला करेगा, वो बताएगा तुम तो बहुत बड़े वली कामिल हो गए, देखो ये चीज़ होने वाली थी पहले से तुम्हें पता चल गई। इसी तरह दीगर चीज़ों का, और ये हकीकत है कि ये होता है, लोग समझते जी हम तो बहुत बड़े वली अल्लाह हो गए, हमें ये चीज़ मालूम हो गई, हमसे ये करामत सादिर हो गई, हालांकि वो सिर्फ शैतान का दिया हुआ फरेब होता है, हकीकत हाल नहीं होती। तो शेख की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो इन तमाम चीज़ों से अपने मुरीद को आगाह करता है, राय सलूक तय करने वाले को मुत्तला करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी के हाथ पर बैत की जाए, इरादत कायम की जाए, और इरादत भी कामिल हो, नाकिस ना हो, पीर पर ब्लैंक फेथ हो, यकीन हो कि यही हमें सीधे रास्ते पर पहुंचाएगा। अगरचे उसकी बातें खिलाफ अकल भी आपको मालूम हो, लेकिन आप उसके हुक्म पर अमल कर लीजिए। हो सकता है कि इम्तिहान लेने के लिए हो और बाद में उसी इम्तिहान में कामयाबी की वजह से कोई दर्जा कोई मर्तबा आपको हासिल हो जाए। बाद औकात ऐसा होता है कुछ लोग इम्तिहान लेने के लिए बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में आते हैं, हर किस्म के लोग होते ना, चलो चलकर देखेंगे कितने पानी में हैं, ज़रा सा इम्तिहान लें, एक चीज़ है उन्हें मालूम है, कहाँ ये जाकर पूछते हैं देखो इसका क्या जवाब देते हैं। और एक वो होते हैं जो सिर्फ फैज़ लेने के लिए आते हैं, सिर्फ उनको किसी चीज़ से गर्ज नहीं, उन्होंने देखा ये अल्लाह का नेक बंदा है, बरगुजीदा बंदा है, एक मकाम पर है, बुज़ुर्गान दीन की सरपरस्ती इन्हें हासिल है, हम भी जाकर कुछ फैज़ हासिल कर लें। तो याद रखिए जो फैज़ लेने के लिए आता है हकीकत में फैज़ लेकर जाता है, और जो इम्तिहान लेने के लिए आता है वो सब कुछ गंवा कर चला जाता है। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू रूहानियत में एक बुलंद मकाम रखते थे, अपने मकाम को मर्तबे को कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन हमने सवाल किया कि बताइए कि आपका क्या मकाम है, कहा कोई मकाम नहीं, आज हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं जी हमने इतनी इबादत की, इतनी रियादत की, इतना मुजाहिदा किया, कभी उनकी ज़बान से ये नहीं सुना कि हमने इतने चिल्ले किए, या इत्तेफाक से कभी जिक्र आ गया तो आ गया। अब फरमाया कि नहीं, मेरा कोई मकाम नहीं, मैं तो एक फ़कीर हकीर हूँ। फिर हमने पूछा कि नहीं, आप बताइए कि, क्योंकि जाहिर है चीज़ों को देख कर, मामूलात को देख कर, उनके बताई हुई हिदायत को और चीज़ों को देखकर अंदाज़ा होता था कि मकाम या तो कुतुब का है या फिर इससे भी बुलंद है, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। जब हमने बहुत पूछा तो सिर्फ एक इरशाद फरमाया, फरमाया कि बस ये समझ लो कि रूहानी तौर पर जिसकी ड्यूटी कहीं लगती है तो इस फकीर से पूछा जाता है, फिर ड्यूटी लगती। आप गौर कीजिए, यानी रूहानी तौर पर किसी की भी ड्यूटी कहीं लगे, ड्यूटी से मुराद क्या है कि साहिब वक्त है, रिजालुल गैब है, अब्दाल है, औताद है, नुकबा है, नुजबा है, खुतबुल अख्ताब है, जितने भी ये सारे दर्जे हैं ना, मर्तबे। तो फरमाया जिसकी ड्यूटी लगती है, इस फकीर से पूछा जाता है और फिर ड्यूटी लगती है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि उनका क्या मकाम होगा। तो एक जगह तशरीफ़ ले गए, एक नौजवान आया और वो उन्हीं में से था जो बुज़ुर्गों का इम्तिहान लेने के लिए आते। उसने देखा बड़ा मजमा लगा है, आके थोड़ी देर बैठा रहा। हजरत ने तो एक नज़र में पहचान लिया कि ये कौन है और किस लिए आया है। आगे बढ़ा और कहा कि मुझे एक सवाल करना है। फरमाया क्या सवाल है? आप ये बता सकते हैं कि मेरे दिल में क्या है? आप ये बताएं कि मेरे दिल में क्या है? फरमाया नहीं। बड़ा मुस्कुराया और उठकर चला गया। हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया और हैरत हुई और कहा कि हजरत ये आप बता देते। फरमाया जब वो आया ही इम्तिहान के लिए था तो मुझे क्या ज़रूरत है, अगर अकीदत और मोहब्बत से आता तो फिर फैज़ हासिल करके जाता, लेकिन इसकी नीयत में ही ये था कि मैं इम्तिहान लूँ। तो जब ये इम्तिहान ले रहा है तो हमने तो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ आता ही नहीं, हम तो फ़कीर हकीर हैं, हम क्या जाने, हम क्यों अपने आप को इस पर जाहिर करें। मैं सोचने लगा कि कितना बदनसीब इंसान था कि अगर यही अकीदत और मोहब्बत के साथ आता तो उनकी एक ही नज़र इसकी काया पलट देती। तो बुजुर्गान दीन का अपना अपना मिजाज है, अपना अपना अंदाज है, कुछ ऐसे होते हैं जलाली जो उसी वक्त सज़ा दे देते हैं, लेकिन हजरत की तबीयत में तो सिर्फ जमाल था, रहमत थी, शफ़क़त थी, मोहब्बत थी, हर एक के लिए माफ़ी थी। तो फरमाया कि मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया कि मैं खामखे अपना वक्त ज़ाया करूं, फिर ये कोई और सवाल करता, फिर सिलसिला चलता, मैंने पहले ही चीज़ को ख़त्म कर दिया। और वो बड़ा मुस्कुराता हुआ चला गया और वो ये सोचता हुआ गया होगा कि देखो मैंने कैसे इनको खामोश कर दिया। ये नहीं पता कि खुद अपने आप को उसने धोखा दिया और अपने आप को खसारे में डाल लिया। पता ये चला कि जिस बुज़ुर्ग की बारगाह में आप जाएं, हमेशा फैज़ लेने के लिए जाएं, और जिसके हाथ पर बैत हो जाएं, अपनी मर्ज़ी को उसकी मर्ज़ी पर, अपनी रज़ा को उसकी रज़ा में, अपनी मंशा को उसकी मंशा में फना कर दें, ख़त्म कर दें, तब जाकर वो इरादत कामिल इरादत होगी। और जब कामिल इरादत होगी तो फिर इंसान बामुराद होगा। एक होता है ना बेमुराद और एक होता है बामुराद। बेमुराद जिसको कुछ नहीं मिलता, जैसे खाली हाथ गया वैसे ही खाली हाथ आ गया, लेकिन एक वो होता है कि जो कुछ हासिल करने के लिए जाता है, अकीदत और मोहब्बत के साथ जाता है, तो उसकी इरादत कामिल होती है। तो इसलिए जो राह सलूक तय करने वाले हैं उन पर यह लाजिम है कि जिसके हाथ पर बैत कर लें, फिर बिला चूनो चरा उसके हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दें। क्या कभी आपको आजमाएगा, कभी हुक्म देकर, कभी किसी तरीके से, तो अगर आपकी इरादत कामिल होगी तो यकीनन आप फैज़ हासिल कर लेंगे, और अगर इरादत नाकिस होगी तो फिर कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर इम्तिहान लेने के लिए जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, और अगर फैज़ लेने के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। बाद रिवायतों में आता है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनको जमीन पर उतारा गया तो हिरन, हिरनों की एक टोली उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए इलाहुल आलमीन, तेरा नबी, तेरा खलीफा इस दुनिया में आया है, तो हमें इजाज़त हो तो हम ज्यारत कर लें। इरशाद रब्बानी हुआ, हाँ ज्यारत कर लो। तो हिरनों की वो टोली, वो जमात या वो रेवड़, जो भी आप कहें, वो आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज्यारत करने के लिए। उनकी नियत क्या थी? अल्लाह के नबी और अल्लाह के खलीफा जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं उनकी हम ज्यारत करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब वो आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उन पर फेर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि उनके अंदर खुशबू पैदा हो गई, मुश्क। आप कहते हैं ना मुश्क, आप देखते हैं कि मुश्क जो होती है ये नाफा होता है, उसकी नाफ में होती, तो इसीलिए उसको नाफा कहा जाता है, और उसमें से वो मुश्क निकलती है, और मुश्क आप जानते हैं खुशबू हर जगह फैलती। तो जब ये हिरनों की जमात वापस आई तो खुशबू थी, तो दीगर जो थे और हिरन, उनका ये तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुई? उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया। इन्होंने कहा अच्छा, सिर्फ हाथ फेरने से खुशबू पैदा हो गई? उन्होंने कहा हाँ। इन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं, हम चलकर देखते हैं। अब ये लोग भी आए, किस लिए? कि खुशबू पैदा हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने उसी तरह दस्ते मुबारक फेर दिया, लेकिन खुशबू पैदा नहीं हुई। जब ये वापस आए तो उन्होंने उनसे कहा कि हाथ तो हमारे ऊपर भी फेरा और हाथ तुम्हारे ऊपर भी फेरा, तुम्हारे अंदर खुशबू पैदा हो गई, हमारे अंदर खुशबू पैदा नहीं हुई। तो आप जानते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हम खुशबू लेने नहीं गए थे, हम तो अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने गए थे, हम तो उनके चेहरे मुबारक को देखने के लिए गए थे, इस वजह से हमें यह इनाम मिला, और तुम लोग पहले नहीं गए ज़ियारत के लिए, जब हमारे अंदर खुशबू पैदा हुई तब तुम गए, और तुम्हारी गरज यही थी कि तुम्हें खुशबू मिले, इसलिए तुम जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने देखा कि इरादत कामिल और इरादत नाकिस दोनों का बयान आपने सुन लिया। इसलिए हमें ये चाहिए कि जब भी, पहली चीज़ ये कि जिसके हाथ पर बैत करें उसके साथ अपनी इरादत कामिल रखें, उसके हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दें। उसका हुक्म खिलाफ शरा हो या खिलाफ अकल हो, खिलाफ शरा तो कम ही होता है, अक्सर खिलाफ अकल होता है, तो इंसान सोचता है कि ये चीज़ तो अकल में नहीं आ रही, ये कैसे करें, तो उसी में ही उसकी तरक्की रुक जाती, रूहानी तरक्की। तो उसको चाहिए कि वो हर हुक्म के आगे, अपने शेख के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे, ताकि उसकी इरादत कामिल हो, और जब इरादत कामिल होगी तो दर्जा बदर्जा वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसको मकामात मिलेंगे, इनकशाफात होंगे, मुशाहिदात होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जब होंगी जब उसकी इरादत कामिल हो। अगर इरादत नाकिस है तो कुछ हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि खानकाह में हमने देखा कि कोई एक दिन आया और एक ही दिन में सब कुछ लेकर चला गया, और कोई 20 साल से पढ़ा है उसे कुछ हासिल नहीं। ये कामिल इरादत और नाकिस इरादत का नतीजा होता है। तो अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम जिसके भी हाथ पर बैत हैं अपनी इरादत उसके साथ कामिल रखें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अपने शेख के साथ कामिल इरादत रखने की और उनसे रूहानी फ्यूज़ व बरकात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।